نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في قرآن مجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الحمد لله، الله پاک کے فضل کرم اور کرم عظیم کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں ایک فکر کے تحت جمع کیا ہے، یا جو بھی اس مجلس میں شامل ہیں، ایک خاص فکر کے تحت ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور وہ ایسا فکر ہے کہ ہر مومن اور مومنات کو، ہر مرد ایمان والا ہو اور عورت ایمان والی، اس کے لیے لازم ہے تمام فکروں سے زیادہ اس فکر کو اختیار کرنا. فکر کہتے ہیں سوچنا، غم لگنا، سیسلی اس کو لینا. جیسے ہمیں غم ہوتا ہے کہ بھائی رزق کا کوئی بندوبست کریں، فکر ہے نہیں، بچوں کی تعلیم کا کچھ کریں، مکان لینے کا کچھ کریں، وغیرہ وغیرہ، زندگی تفکرات ہیں. اور یہ سارے فکر جو ہیں بجا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سارے تفکرات کا تعلق جو ہے وہ اس محدود دنیا تک ہے، عارضی دنیا تک ہے. ضرور کریں، کرنے چاہیے، زندگی جو گزارنی ہے اس میں، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ ہم اس فکر میں اتنے غرق ہو جائیں کہ جو اصل فکر ہے، یہ عارضی دنیا کا اتنا فکر ہے، تو ایک حقیقی دنیا جس میں ہم نے جانا ہے اور جہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں ہماری نظروں سے، اس کا فکر اس سے غالب ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو بہت برا حال ہے، بیوقوفی ہے پھر تو. اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آسائش کے لیے ہم فکر رکھتے ہیں، ضرور رکھیں، لیکن اس سے زیادہ فکر وہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ہم نے زندگی گزارنی ہے پوری، کب، کوئی نہیں، بس مستقل. جیسے سفر میں کہیں رک گئے ہم کسی ہوٹل پہ، موٹر وے پر، تو وہاں کا جو ہمیں فکر ہوئے اتنے ہی ہو گئے ہیں، رکے ہیں بھائی، چلو برداشت کر لیتے ہیں آدمی، کچھ بھی معاملہ تو سفر کرنے یا سب کچھ ٹھہرنے میں. لیکن جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں تو ہم نے رہنا ہی ہے، اس کے لیے بہت فکر آدمی کرتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں سوچو، وہاں جو رہنا ہے اس کو چھوڑو یار، یہ تو بہت گزر جائے گا، ہے نا، اس کو سوچو جہاں ہم نے جانا ہے، واپس جانا ہے یار، اس کے بارے میں سوچو وہاں جہاں ہم نے رہنا ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے فکر ہونا چاہیے انسان کی، مومن معاملات. اگر یہ نہیں ہے تو بھائی اپنا علاج کرے آدمی کہ میں یہ پاگل والی حرکت کیوں کر رہا ہوں، یقینا پاگل ہوں میں، عقل کیوں نہیں مجھے آ رہی. تو یہ فکر، اب فکر کے بعد جب آ جاتے انسان میں تو اس کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے فکر آ گئی کہ بھائی میں نے اپنا روٹی روزی کرنی ہے، اس کے بعد فکر کے بعد میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، بھائی نوکری ہے آپ کے پاس यार काम तलाश करूंगा, कुछ तो करूंगा ना काम, खाली फिक्र से काम तो नहीं बनता आदमी की, होता है ना सर? सब बैठे हैं आप जॉब कर रहे हो ना कोई तो लगा ही होगा ना कहीं, या नहीं लगा हो सकता काम ना कर रहे हो आज? क्यों भाई, हमें खाना भी लाना है, रोटी भी लानी है, सब जो नहीं कर रहा था उसको कहते निखट्टू है, बेकार बेकार आदमी है, गाली पड़ते रहे, लोग मारते रहते हैं उसको हर जगह से। इसी तरह जब आखिरत का फिक्र है हमें तो खाली बैठ जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? और फिक्र क्या है वो, आखिरत का फिक्र क्या है वो तो सुन लें। आखिरत का फिक्र ये नहीं है हमारा मकान कैसा होगा, किसी को फिक्र है कि जन्नत में मैं कहूँ ये डेकोरेशन ऐसी चाहिए, इसमें पेपर ऐसे लगा देने, फरिश्ते क्या कर रहे हैं, लाइटें कौन सी लगा रहे हैं, आज तक किसी ने सुना? पता है जन्नत में जा रहे हैं बेफिक्र हो, क्यों? कि बनाने वाली उसकी जात खुद बनाएगी, हमें फिक्र की क्या जरूरत? तो जिस आखिरत की फिक्र में, ये तो माइनस हो गया कि मकान की सजावट बनावट या कारपेट डालना है, इसके तो किसी को फिक्र नहीं होगा, किसी को नहीं है किसी जन्नती को। फिर ये भी फिक्र नहीं होगा यार, चलो मकान तो बड़ा मिल जाएगा तो उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे, वाटर बिल आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, मीटर न लगवाएं तो शायद काम चल जाए, इलेक्ट्रिक का बिल कैसे देंगे, किसी को है जन्नत के मकान का फिक्र? है कलमंद आदमी है, ये आदमी या तो रहे मुफ्त रहेंगे मकान, बिल्कुल जो मकान दे रहा है बिल भी वही देगा, बोलूँ ऊँचा सुभान अल्लाह। देखो ना, तो ये भी गायब हो गया, तो ये भी कोई फिक्र की बात नहीं है या नहीं? बाकी रह गया यार, अब जन्नत बहुत बड़ी जगह होगी, यार दोस्त होंगे, कभी दिल करेगा चलो भाई आज जिक्र करते थे साथ चले जाते हैं, भाई फलां से मिलाते हैं, उससे गपशप, आदमी बोर भी होता है, अकेला बोर हो जाता है, चलो ये पुराने साथी जो दुनिया के थे आओ यार उसके पास चलते हैं, चाय शाय पियेंगे, वहाँ की कॉफ़ी पियेंगे, या मछली छछली खाएंगे आराम से, कुछ चिकन बुना खाएं, उसकी जो हो रहे हैं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अब यार है तो बड़ा वो तो उससे बड़ा रहता है, उस कोने पर आसमान पर रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो यार सवारी चाहिए, कोई फिक्र नहीं, बस आपने सोचना है बेहतरीन सवारी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, बेहतरीन, बस बैठना है इस पर, हमने इशारा करना है, हमने बताना नहीं कहाँ जाना है, खुद सवारी समझेगी कि इसने किस मुकाम पे जाना है। ये भी फिक्र नहीं रह गई यार गाड़ी खरीदनी नई मॉडल की, ये क्यों, जो हमें ऊपर लेके गए हैं मकान दिए तो गाड़ी भी देगा नहीं देगा, बातें समझ रहे हैं मैं नहीं समझ रहे, जन्नत की सैर करा रहा हूँ आपको, ये भी फिक्र नहीं, पर फिक्र क्या है, तकलीफ क्या है हमें जो आखिरत को सोचे, पर यहाँ तो हमें यही तकलीफ है ना सारी, आखिर क्या तकलीफ है? सोचो दो मिनट दे रहा हूँ, कुछ तो फिक्र होना चाहिए ना आखिरत का, पता है किसी को कुछ नहीं पता, नहीं समझ आता हूँ, बस इस तरह जिंदगी हम समझदार है, ना तो वहाँ मकान का फिक्र है, ना किसी ने कभी सोचा बिल दूंगा, ना किसी ने सोचा गाड़ी होगी, बस जन्नत में जाना है, तो फिक्र जो है आखिरत का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कि हमारी निजात हो जाए, फलाह पा जाए, ये सारे खेल जो जन्नत को बता रहा हूँ किस पर हैं, निजात पर हैं, फलाह पर हैं, तो हमें जो फिक्र होना चाहिए अल्लाह ताला तो इस दुनिया से हमें कामयाब भेज दे, बस हमारी निजात हो जाए, ये है फिक्र, निजात हुई नहीं, जितनी चीज़ें मैंने बताई वो मिली नहीं, उसी वक्त मिल जाएंगी, हमें उन चीज़ों की फिक्र नहीं, फिक्र किसकी हो, बस हम निजात मिल जाए, फलाह पा जाए, देख फिक्र है हमें, क्यों भाई निजात की फिक्र है या नहीं है? सबको है, ऊँचा बोलना डर क्यों है, हैं? जिसको नहीं बताया मुझे, सबको होगी, सब चीज़ अल्लाह ताला हमारी निजात कर, फलाह दे, जहन्नुम से बचा, ये निजात का मतलब जहन्नुम से बचा, जन्नत में पहुंचा, अजाब कमर से बचा, ये सब क्या है, निजात कहते हैं इसको, आसान मौत अता फरमा, नागानी मौत से बचा, डूब के मरने से बचा, जल के मरने से बचा, गिर के मरने से बचा, एक्सीडेंटों से बचा, ये सब दुआएं हैं ना, तो ये सब क्या है, निजात, इसको कहते हैं निजात अच्छी हो जाए हमारी, आराम से निकल जाए, साफ सुथरी जिंदगी में आखिरत की मिलती, सब चाहिए हमें, चलो कुरान से पूछते हैं फिर कैसे मिलेगी हमें, मिलेगी तो करेंगे आप वो, हैं कुरान बताएगा, फिर अल्लाह ने जो किताब दी ना सब बताए, इतनी बड़ी बात नहीं बताएगा कुरान में, सोचने वाली बात है, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जो आखिरत का मकसद है, तो कुरान नहीं बताएगा, सोचने आप जरूर बताएगा, कुरान बता रहा है कद अफलहल मोमिनून, बताया देगा मोमिनून, जितने भी ईमान वाले मोमिन औरतें हैं निजात पा गए, बता दे निजात है उनके लिए, कद अफलहल मोमिनून, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गारंटी दे दी, बिल्कुल फारिग 100% निजात अल्लाह ताला कहते हैं। क्या अमल है जिसके लिए अल्लाह ताला ये कह रहे हैं निजात मिल जाएगी? कोई अमल तो होगा ना, अल्लाह दे रहा है हमें अमल कि ये अमल करो इंशाल्लाह निजात हो जाएगी, तो अल्लाह कुरान में बता रहे हैं तफलहल मोमिन अल्लज़ीना सलातम, यही है ना, क्या बात है, नमाज, नमाज कितनी बड़ी चीज है, नमाज अल्लाह ने कह दिया नमाज एक ऐसा अमल तुम्हें दे रहा हूं कि जिसने इसको अख्तियार कर लिया, कद अफलहल मोमिनून, कोई औरत मर्द जो भी इस नमाज को पकड़ लगी अल्लाह कहता है मैं रब वादा करता हूं मैं उसको फला दे दूंगा, उसके लिए फला है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए नमाज अल्लाह पाक करे, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम। कितना अफसोस की बात है अगर हम नमाज ना पढ़े, सोचिए कितना जरूरी है नमाज पढ़ना, छोड़ेंगे नमाज, एक ही चीज अल्लाह पाक ने की है फलाह के साथ, जो एक अमल दिया अल्लाह पाक, क्या दिया है, सलाते मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, और जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज छोड़ता है, नमाज में सुस्ती करता है, उसके लिए क्या कहूँ, कहते तो वो तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कुफर में चला गया आदमी, क्योंकि एक नमाजी चीज़ है, इधर काफिर खड़ा कर दो, इधर मोमिन खड़ा कर दो, इन दोनों की पहचान किस पर होगी, अल्लाह, जब भागा जा रहा है नमाज की तरफ, नाक से नहीं होगी, काफिर की नाक भी ऐसी होती है, रंग से नहीं होगी, उनकी भी रंग ऐसे होते हैं, दाढ़ियों से नहीं होगी, उनके पास भी दाढ़ियाँ होती हैं, इमामों से नहीं होगी, उनके पास भी इमामें होते हैं, धोतियों से नहीं होगी, धोती उनके पास भी होती है, सफ़ेद रंग से नहीं होगी वो तो उनके पास भी होते हैं, दौलत से नहीं होगी वो तो उनके पास, कहीं भी हमारा रिफ्रेंशिएट नहीं है उनके साथ, वो भी इंसान है हम भी इंसान हैं, लेकिन एक फलाह पाने वाला और एक फलाह नहीं पाने वाला अखरवी, फ़र्क दोनों में ये है, अगर हम कहते हैं मोमिन है, बिल्कुल मोमिन है, लेकिन फलाह पाने की शर्त है मोमिन के साथ, और वो शर्त अगर नहीं होगी तो अल्लाह कह दे ये तो मिल चुका है कुफर के साथ, नमाज को निकाल दो पता नहीं चलेगा कौन अल्लाह मिला नहीं मिला, अल्लाह आओ हम जरा अपने माशरे को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं, अपनी खुद जिंदगी को देखते हैं, छोटी छोटी बात है, एक टके की दुकान पे खड़ो जो हमें नमाज को छोड़ देते हैं, एक मेहमान आ गया तो नमाज को छोड़ देते हैं, खाना पकाना पड़ा किसी का तो नमाज को छोड़ देते हैं, जरा मूड ऑफ हुआ तो नमाज को छोड़ देते हैं, लंबा आपको सफर कर लिया, सबसे बड़ा जो हमारा जोर चढ़ता है ना, सबसे बड़ा सबसे पहले छोड़ने की चीज आएगी ना किसी वजह से, वो क्या आएगी, सारा नजर उस पर गिरता है, यार थके हुए हैं, खाना खाएंगे थके हुए, यार थके हुए हैं, रोटी खा रहे हैं थके हुए, गप्पे मार रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब खराफात भी चल रही है, सब कुछ हो रहे हैं, थके हुए हैं, या नमाज, बस सारा नजला, बीमार हो गए, नजला किस पे गिरेगा, नमाज, बीमार है भाई क्या करें, छोड़ नमाज, क्या घर ही पढ़, सबसे पहले जो आपको शैतान वसवसा डालेगा पर जबान लोगों के जो घर में होंगे ना आपके, कहाँ जा रहे हो भाई, बीमार हो तुम तो घर में पढ़ लेते हैं नमाज, अब घर में पढ़ते 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 क्या नमाज, ये हाल हमारा, ऐसी उम्मत जब हो जाए जो सबसे बड़ी चीज अल्लाह पाक ने दी है, क्या चीज है वो, मर जाए इंसान नमाज को ना छोड़े, इमाम हुसैन कैसी मिसाल कायम फरमा गए, ये कोई छोटा वाकया तो नहीं था, लड़े लड़ते 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 आखिर जब ऐसा मुकाम आ गया कि तो नमाज का टाइम था, तो कहते ठहरो भाई पता है तो अब तो जख्म चूर हो चुका हूं, सारा जिस्म मेरा खत्म हो चुका है, छलनी जिस्म था, क्या चाहते हो, मुझे शून्य कहते हैं, कहते कुछ नहीं चाहता, मुझे अपने रब का सजदा करने दो, एक पास गर्दन काट सकते थे, शहीद नहीं कर सके थे जालिम लोग, देखें क्या मिसाल देंगे अहले बैत। और ये मिसाल कायम भी करनी थी तो नबी के घर से कायम हुई, याद रखें। अहमियत देखें आप, ये वाकई किसी के साथ भी हो सकता, लेकिन ये भी कुर्बानी नबी के घर वालों ने देखकर साबित की कि नमाज को मत छोड़ना। देखो मेरे घर वाले मिसाल दे रहे हैं इस दिन की, आम छोटा आदमी नहीं है, कि सभी ने मिसाल नहीं दी। बड़ी बड़ी शहादतें हैं हमारे उसमें, बड़ी बड़े चीज़ें वाकयात हैं, लेकिन उस दौर के अंदर जो हमारा मुतसिल था हमारे साथ, नबी हमसे बहुत दूर चला गया था दौर, और अजीब जब फितने जब पैदा होने, अब तो फितनों का अंबार है ना, तो एंड पे अल्लाह ताला ने वही अहले बैत को खड़ा किया इस सिलसिले में, तमाम सहाबियों को निकाल के उनको, और वो भी अजीज तरीन हस्ती इमाम हुसैन नवास रसूल, जिससे सख्त तरीन मोहब्बत थी, सख्त तरीन शहादत सुन के जिनके आंखों आंसू निकल रहे थे, नबी पाक उनके रो रहे थे, उनको कायम किया। क्या दिखाने के लिए मिसाल? वही जो नाना ने की थी, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो आप क्या लोब हिल रहे थे, सलात सलात के बारे में थे, नमाज को मत छोड़ना। वही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कि भाई मैं अब सिर्फ मुझे ना पानी चाहिए, मुझे किसी किस्म की जरूरत नहीं। यार होश होता है इस वक्त, मैंने यहाँ अपनी मिसाल दी है, हम जरा थके नहीं, किस पे नजला गिरता है, ऊंचा बोलो साथ। उधर क्या आ रहा है कि जिस्म कट चुका है, औलाद खत्म हो चुकी है, प्यास से जबान बाहर निकल चुकी है, यानी वो वाकयात हुए कि जो हिस्ट्री नहीं बता सकती। एक नहीं, बच्चे भतीजे भाई बहन सब उड़ गए, कुछ नहीं। भाई मांग क्या रहे हैं कि भाई सुनो ठहर जाओ, वो चीज तो कर ही सकते थे उनको, क्या जी सिजदा करने दो, थे तो मुसलमान ना, जो कुछ भी थे वो उन्होंने ठीक कर पढ़े नमाज, नमाज बांध को क्या सिजदा होगा, मुझे बताएं सिजदे हुसैन। सोचिए नमाज से रसूल और नरक में दुश्मनों के, और शौक किसका, अल्लाह से मिलने का, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ कि एक दफा फिर अपने आखिरी सिजदा अपने रब को दे दूं मैं, सिजदे में गए तो गर्दन वहीं कटी आपके सिर से, क्योंकि अब तो काबू आ गया, वहीं शहीद कर दो। ये इतनी बड़ी मिसाल है, क्यों दे मिसाल, इसलिए कि मेरी उम्मत को समझ आ जाए कि ये वो फेल है नमाज कि तुम्हारी वाहिद एक अमल होगा, अगर नमाज नहीं बचा सकी तो जिक्र नहीं बचाएगा, नमाज नहीं बचा सकी तो कुरान नहीं बचाएगा। ये सुन लें, नमाज नहीं बचा सकी तो हज नहीं बचाएगा। मुफ्ती नहीं हूं लेकिन मैं हदीस और कुरान की बातें आपको बता रहा हूं, कोई अमल नहीं बचा सकता निजात बजुद उसके नमाज के, जिसकी नमाज सही होगी वो बचेगा, उसकी निजात होगी, उसके बाद तमाम चीजों को देखा जाएगा। याद रखें, हम बात करते हैं कि भी जिक्र को जी है तो कुरान पढ़ो, इतलावत करो, तो फलां ये करो, सबसे पहले जो चीज पेश होगी हमारी अल्लाह के हजूर में वो क्या होगी, ये नमाज की। और बात सुनो मुझसे, आप सोचें नमाज है ये, हम जो अदा करते हैं तो पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं था मुसलमान का, तो कह ही दिया कि वो तो मिल गया काफिरों के साथ, नौ सरत का पता। बाकी रही वो जो उसकी सजाएं हैं वो तो हम देख रहे हैं जो आजकल हैं, सब सजाएं नहीं चीज की। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत ही छोटी सी प्यारी याद लिखी है, इन्ना इल्म इन अन्नल्लाह शदीदुल अकाब, और फिर फरमाया अन्नल्लाह गफूर रहीम, ये दोनों मिला दिए आए थे, है ना कुरान की। बड़ा मजा आया मुझे दोनों आए थे एक जगह पढ़ के, सुभान अल्लाह, है लो पता है तुम्हें अल्लाह ताला कहते हैं, जानते हो क्या सिर्फ बताइए। देखो एक तरफ अल्लाह ने जन्नत रखी और एक तरफ क्या रखा है, दोजख को रखा है, और इंतखाब हमें दिया है, बताओ क्या चाहते हो। दोनों चीजें में तुम मिल सकती हैं, तुम खुद सोच लो, और इसका अख्तियार हमें दे दिया। देखिए सुभान अल्लाह, शदीद उधर क्या है, शदीद अकाब है उधर क्या है, गफूर रहीम है। इस तरफ आना चाहते हो, इस तरफ आना चाहते हो, अल्लाह ताला कहते हैं फैसला तुम्हारा है। इधर आना चाहते हो या इधर आना चाहते हो, अगर आना चाहते हो शदीद अकाब तो वो मेरा शदीद अजाब उस वक्त उतरेगा जिस वक्त तुम मेरी नमाज को तर्क कर दोगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक नहीं दिखाऊंगा, मिसालें दूंगा तुम्हें कौमों की, मैं फिर किस तरह तबाह करता हूं। फिर बेशक देते रहो तुम औजाने, बेशक जो कुछ करते रहो। कहता बस एक दफा मैं जब आ गया ना आप जलाल में, अल्लाह ताला कहता है, तो फिर मेरी सजाएं ऐसी हैं कि फिर इंसानों को हवाओं की तरह उड़ाता हूं। मिसालें दी, अजीब अजीब अजाबों के साथ अल्लाह ने मिसालें दी। ऐसे आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बस्ती को उठाया, देखिए अजीब ऊपर तक ले गए अल्लाह, और ऊपर से लेके ऐसे मारा बस्ती को, पता ही नहीं चला गए किधर, लोग हवाओं में उड़ गए, सब नाज़ो नख़्र इंसान की खत्म हो गई। किसी को आया तो हवा से ऐसी हवा चलाई, हवाओं में उड़ गए लोग, पता ही चला किधर गए। और किसी को क्या किया, जमीन को हिला के रख दिया, जलजले ऊपर नीचे नीचे ऊपर खत्म, पता ही को नहीं चला। तो हम कोई सर्टिफिकेट लेके आए किस चीज के गरूर में लोग हम बैठे हैं, लेकिन एक वक्त चलता है। अल्लाह के बंदों को अपने घरों में गौर से देखो कि नमाज का तर्क ना हो। मेरी बातें समझ आई या नहीं है, यह है कुरान का पैगाम। हम कहां तलाश करते फिर उसको, भाई फलाह के लिए हमें कोई अमल चाहिए, अल्लाह ताला ने कैसा अमल बताया, साफ खुल्ला। कोई घर वो घर नहीं, कब्रिस्तान है जिसमें नमाज नहीं है, वो इंसान इंसान नहीं जिसके सरों पर सजूद के निशान ना, वो मुर्दा है चाहे कितना खा ले। वो ईमान क्या, ईमान की तो एक हैसियत अल्लाह ताला ने बता दी कि मैं इतनी बड़ी बात को मान नहीं जाता, क्या करता है, छोड़ सकता है कोई मुझे बताए इन बातों के बाद कोई नमाज को छोड़ सकता है, बजूस उसके कि भाई आदमी बहुत सख्त बीमार हो गया, पता नहीं बेचारे को बेहोश पड़ा है तो और बात छोड़ने की, या कोई जो शरी मजबूरी दी है अल्लाह पाक ने इसमें आप मस्जिद में नहीं जा सकते हो तो फिर भी। लेकिन नमाज की आखिरी पोजिशन ये बताइए पढ़ने की कि जिसमें हिले भी ना तो इशारों से पढ़ लो, आंख से ऐसे पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं, बस नमाज की नीयत करके नमाज के अरकान आप पूरा कर दो, मैं ये सिजदा कर रहा हूं, मैं रुकू कर रहा हूं, नमाज हो जाएगी। और औरत के बारे में तो यहां कहा है कि अगर उसका बच्चा पैदा हो भी रहा हो और आधा अंदर आधा बाहर हो, उस वक्त भी वो नमाज पढ़ ले, तो उल्मा कराम आपको बताएंगे उस हालत में क्या वो नीयत कर लेगी मैं नमाज पढ़ रही हूं, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो। और हम खाते पीते हटे कट्टे बिल्कुल चार चार छह छह फुट के इंसान, और समझते बस अपनी मर्जी है, पढ़े या ना पढ़े हमें क्या फर्क पड़ता, मेरा पुत्र पढ़े ना पढ़े कोई नहीं, ना के कम तो गर्दन है ठीक ठाक है, रोजी तो कमाते हैं ना, बड़ा सोना कमाते हैं रोजी, पंजाबी बात कर रहा हूं आपसे, गुजराती से मिलती जुलती कि भाई खाना बना तो बहुत अच्छा बनाता है ना, कमाता है माशाल्लाह, देखो क्या गाड़ी ली है इसने और क्या माशा तरक्की कर रहा है, ये मेरा ये लड़का काम करता है, मेरा लड़का वो काम करता है। और कोई पूछ रहा है मौलाना जी इसमें कोई नमाजी भी है, वो जी नमाज मौलियों का काम है, कितने टाइम मिल रहा है आजकल, यहाँ इस मुल्क में आए हैं ये भी कहते हैं इस मुल्क में आए हैं जी, नमाजी है क्या इस मुल्क में आए क्या, तो वह करते हैं सब लोग नमाजी से नहीं कर रहे, मैं भी करूं और सब भी करें और पूरी उम्मत के लिए करें। ये जो हालात आए ना इस वक्त उम्मत पर, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, बड़े बेवकूफ हैं लोगों को ब्लेम करते हैं, हम किसी को जब आदमी ब्लेम करता है ऐसे ही करते हैं ना, ये कौन सी एक उंगली है ना और बाकी उंगली किधर जा रही है, वो एक है तो यहां कितनी है, शर्म करनी चाहिए फिर तो, इसने तबाह किया जी हमारी उम्मत को, ये हमें मारता है जी, ये जो ये फलां ये कर रहे हैं ना, तीन उंगली करें बकवास बंद कर, ये तुम खुद हो, तू ना फरमान है, तू गुस्ताख है और तेरा ईमान ही सही नहीं, तीन उंगली ये कह रही, तू उसको क्या कह रहा है, उसका क्या कसूर है, क्योंकि ये जो कर रहा है ये बजने इलाही कर रहा है, इसकी क्या जरूरत के कुरान पढ़ने वाले को ये कुछ कह सके, क्यों मालिक तो खालिक तो वो है, हरिक तो पैदा उसने किया है, इसमें क्या ताकत आ सकती है, ये तो खुश तुम पे अजाब देने के लिए अल्लाह ताला ने फसाने पैदा कर दिए सारे ड्रामे सारे, तुम उन्हीं को गाली दे रहे हो, अजीब बात है, हो सकता है हम शॉर्ट हो जाए हमारा तो बिजली को गाली देंगे, वो कहें पकड़ तो तुम हो जो तुमने इसको इसकी जो वायरिंग तुमने सही नहीं कराई, बिजली क्या कसूर, बिजली का काम तो जलाना है, आग का काम तो जलाना है, वो तो अपना काम करेगी नहीं करेगी, आप यहां आग लगाए आग क्यों लग रही है, आग बड़ी बुरी चीज है, फिर आग कहेगी तेरा दिमाग खराब है, मेरा काम तो जलाना है, तू बच सकता तो मुझसे बच, तूने क्यों मुझे अपने पास जलाया, यही तो बात है। जब इतनी कौम हो जाती है इस हाल में नमाजों के, ये हमारे हाल हों
धोबा धोबा धोबा,
जरा जाग के देखे ना क्या हालात है। तल्ला तला कहता है कद अफलुल मोमिनीन, कुल कहता हूं मेरे महबूब फला पढ़ना चाहते तो क्या करो, नमाज। अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून। अब यहां भी सुन, अभी क्या सब पढ़ने से ही निजात नहीं होगी, ये भी सुन, ये इतनी बड़ी चीज है नमाज। अल्लाह पाक कह रहा है इधर तुम मुझे दे रहे हो ये बहुत बड़ा अमल है, पढ़ने से ही ना समझ लेंगे निजात हो जाएगी। अब आगे सुन ले, पढ़ने से निजात नहीं होगी। अल्लज़ीन फी सलातिहिम, शर्त लगा रहा है, वो उन लोगों की नमाज, वो लोग जो ऐसी नमाज पढ़ेंगे उनको फला मिलेगी। कौन से? खाशियों। खाशियों क्या मतलब है? कि दिन के नमाज बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी तीन सिफत बताएंगे अल्लाह ताला ने नमाज की। देखो एक बात सुने, ये नमाज जाती क्या है हमारी? मैंने नमाज पढ़ी है, अभी आपने पढ़ी है, फजर पढ़ी है, पढ़ ली नमाज तो कहाँ गई? गायब हो गई, गुम हो गई, हमें पता ही नहीं गई किधर। मेरे भाइयों, हर नमाज जो हम पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? अल्लाह के लिए कहते हैं। नहीं, नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। इसका मतलब क्या है? हम अल्लाह को दे रहे हैं। नमाज जो हम पढ़ते हैं वो यहां नहीं रहती, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। यानी जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अल्लाह ये नमाज मैंने तुझे देनी है। मेरी बात जरा गौर से सुन, मैं क्या कह रहा हूं? मेरी मैंने अल्लाह ये नमाज तुझे दे रहा हूं। हम ये कहते हैं ना, कितने शर्म की बात है जब आप किसी को हदिया देते हैं। हदिया समझते हैं ना, इंसान जब किसी को हदिया देता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, ठीक है, ये लो जी, आप कहीं बड़ा बदतमीज आ रही है, किस तरीका देने का है यार, वो देने तो रिस्पेक्टफुल तो देता है या नहीं? एक आदमी आता है, वही है चीज पकड़ता है, उसको अच्छी तरह रैप करता है, उसमें नाम लिखता है, नहीं जी माशाल्लाह, अंदर वही चीज है, फर्क पड़ा नहीं पड़ा? अच्छा, फर्क क्या पड़ा? कि जिसने लिया है उसके दिल में यह ख्याल है कि इसको, इसके दिल में मेरी रिस्पेक्ट है। हदिया वही मिला उसको, एक इसको उठा के फड़ो जी, दे रहा ठीक है, और एक वही दे रहा पैक करके, अंदर वही है। वो क्या कहेगा? ये शो कर रहा है कि ये आदमी मेरे रिस्पेक्ट रखता है, अपने दिल में अदब है। और बना के देगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, किस कदर मोहब्बत मुझसे करता है। अब रिस्पेक्ट से क्या हो गई? मोहब्बत हो गई। अगर उसने और उसमें खुशबू लगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड साथ रख दिया, तो आशिक है मेरा ये तो माशाल्लाह। हदिया एक अंदर, देने के तरीके तीन हैं, वो तीन जो बता रहे हैं तरीके वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। एक बता रहा है बदतमीज है, दूसरा बता रहा है मुझे पसंद करता है, तीसरा बता मेरा आशिक है। जब नमाज दी जाती है अल्लाह के हजूर में, हदिया दिया जाता है, तो अल्लाह भी ताला यही देखता है कि कितना बदतमीज आदमी, ये नमाज मेरी देने वाली है, मुझे ऐसी नमाज देते हैं, ये हदिया दे रहे हैं मुझे। अल्लाह ताला पकड़ेगा नमाज के मुंह पे उठा के मारते हैं, पकड़ इसको, हदीस है या नहीं? सोच, ये मुझे हदिया दे रहा है, किसको? खालिक को, मालिक को, ऐसी हदिया देते हैं, ये तमीजें देने की। आए बस ठोंग मार के चले गए, शुक्र उसने आने की तौफीक दी, लेकिन क्या ऐसे पेश करते हैं अपने रब के सामने? ये जो नमाज में दे किसे रहा हूं? अल्लाह को दे रहा हूं। तो ऐसी बना के दी जाए, ऐसी बना के दी जाए कि जब नमाज पहुंचे तो फिर अल्लाह ताला ये कहे ये आम नहीं है बल्कि मेरा आशिक है। ये था आशिकों की नमाज। सुना आपने आशिकों की नमाज क्या होती है? जिसकी मिसाल मैंने दी इमाम हुसैन की, एक सिजदा भारी था पूरी दुनिया पर वो सिजदा। क्यों? सिजदा था, वही तस्वीर पढ़ रहे थे, लेकिन क्या था? इसका मोहर लग चुकी थी, देखो मेरे आशिक का। हाथ कहते हैं जब आदमी किसी को हृदय देता है, देखो मेरे महबूब ने मुझे, देखो कितना बेहतरीन तोहफा दिया है, कितनी यार रंगत है इसमें, किस कदर खुशबू आ रही है, कैसे पैक किया है इसमें, कितनी मेहनत इसने की होगी, यार बहुत मोहब्बत करता है ये मुझसे, तो है या नहीं? है चीज सस्ती मामूली, लेकिन जब उसने रिप्रेजेंट की, उसको दिल निकाल के रख दिया उसने, कि काश और भी मैं कुछ इसमें इसमें डेकोरेशन कर सकता तो उतना ही मैं उसको। अब वो जितना उसमें डेकोरेशन कर रहा है, जितना सजा रहा है, वो दिल में उसका क्या? अपने महबूब का ख्याल है कि खुश हो जाए। हैं, जब आशिक अपनी नमाज को पढ़ता है तो ऐसे तरीके से पढ़ता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। الذين هم في صلاتهم خاشعون, جہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بھئی مگر مجھے نماز دینی ہے نجات کے لیے, جس سے میں خوش ہوں گا اسی کی نجات کروں گا نا. نہیں, اگر تم نے مجھے نماز دینی ہے, ہدیہ بھیجنا ہے میرے پاس نماز کا, جو میں سب سے پہلے دیکھوں گا جب روز قیامت میں جائے گا انسان سامنے کھڑا ہوگا, سب سے پہلے کہے گا لاؤ ان کا تحفہ لانا, ذرا مجھے پیک دکھاؤ, نہ ذکر پوچھے گا نہ وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کیا پوچھے, آج حاجی صاحب کیا جی کیا پیش کریں جناب, اعمال اعمال کتنے ہیں, گنے گن بھی نہیں سکتے جتنے اعمال ہیں, ہے نا بھائی, نہیں گن سکتے اعمال. کہتے ہیں نہیں, عمل ایک عمل کیا, صلات صلات صلات, یہ پڑھنا چھوڑو, وہ دکھاؤ خاشیوں جو اس نے میرے سٹینڈر کے مطابق جس نے نماز پڑھی ہے اس کو لے گا, میں راضی ہوں تیرے سے, میں تو دنیا میں راضی ہو گیا تھا, لے جاؤ جنت میں. جی باقی ہمارا کہتے وہ تو درجات تیرے بلند ہوں گے جنت میں, فی الحال تو جنت میں جا پکڑ نکل باغ یہاں سے, نجات دی نماز نے نہیں دی. تو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس نماز پہ فکر کرنا ہے کہ اس کو ایسے ریپرزنٹ کریں, ایسا ریپ کریں, ایسا ریپر لگائیں, اس کو خوشبو لگائیں, سینٹ لگائیں, اس میں جناب خوب بنا دیں اس نماز کو. فجر مل گئی اللہ کے فضل سے, پھر پتہ نہ فجر ملے نہ ملے, اس پہ ایسا طریقے سے ادائیگی ہو فجر پہ کہ بس دل میں ہمارا ہی مطمئن ہو اور محبوب ہمارا راضی ہو. خاشع, اب اس کی چند نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں, خاشوں کس کو کیسے ہو جائے گی نماز خاشع, تین صفتیں بتاتا ہوں, اگر یہ صفت آپ کی ہماری نماز میں آ گئی تو خاشعون میں آ جاتی ہے الحمدللہ. نہیں سمجھ میری بات, تین صفتیں بتا رہا ہوں حدیث کے مطابق. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مثال دیے نماز کو, بہت حدیث سنتے ہیں ماشاء اللہ ہم اکثر, یہ کیا مثال دی ہے نماز کی, کہ نماز ایک نہر کی مانند ہے, کہا ہے نا جو انسان کے گھروں سے بہ رہی ہو اور اس بہرے نہر کے اندر انسان پانچ دفعہ غوطہ مارے تو جب پانچ دفعہ اس نہر میں نہائے گا کیا اس پہ میل کچور رہے گا, رہے گا نہیں. تو پہلی خاشعون کی نجات یہ ہو گئی کہ ہم نے مثال دی ہے نہر کی, جو اچھی نماز ہوگی آپ کی, اچھی نماز جو ہوگی اس کا کیا حاصل ہوگا, جیسے نہر ہوتی ہے, نہر میں انسان نہا کے آتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے, کوئی میل اس پہ نہیں رہتا, ایسا ہی ہے نا. تو فرمایا جو نماز پڑھ کے آئے گا اس کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی حیثیت ایسی ہو کہ کوئی گناہ کا ذرہ ہی اس کے اندر نہ نظر آئے, بولے سبحان اللہ, یہ ہے بات, یہ صفت ہے نماز کی, اس میں خاشع ہوتی, گناہ کا نام بھی نہ ہو, اس میں صاف ستھرا ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے نماز کے بعد, بڑا مزہ آتا ہے اس کو نماز پڑھ کے, آنسو نکلتے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی آیتیں کل ہو اللہ پڑھ رہا ہے, ان نہ تھا ان نقل کو سی, بڑی بڑی آیتیں پڑھ رہا ہے لیکن سبحان اللہ مست ہو کے اپنا پڑھ رہا ہے خاشعون کے ساتھ. ایک صفت یہ ہے خاشعون کی, یہ مزہ اس نماز میں تھا گناہ چڑھے, اور جو پڑھتے ہیں نماز, نماز پڑھنے کے بعد مشکل سے نماز پڑھ کے جا کے ہزاروں بےمانی کرنی ہے, ہزاروں گالی نکالنی ہے لوگوں کو, ہزاروں فراڈ کرنا ہے, ہزاروں یہ کرنا ہے, تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, بڈے دیکھیں جی ایسی نمازی, جو دوسرے ہیں ان کو بھی دور کر دیتے ہیں نمازیوں سے, یہ ہے یا نہیں ہے معاشرے میں, اور بڈے دیکھنے داڑھی رکھنے والے ہم نہیں کرتے داڑھی نہیں, ہم نہیں پڑھتے نماز چھوڑے, وہ تو خیر بیوقوف ہیں یہ بات کرتے, تو مثال بن جاتا ہے لوگوں کے لیے, یہ جو ہے یہ کام کرنے والے فراڈی ہوتے ہیں, دھوکے بار ہوتے ہیں, کیوں, اس نے نماز خاشعون والی نہیں پڑھی, نماز کے بعد ساری بدماشیں پوری کی ہیں, لیکن جو خاشعون نماز ہوگی سبحان اللہ تو ہلکا ہو کے نکلے گا, اللہ سے اس کو لگے گا کہ میں کسی سے مل کے آیا ہوں, میں مل کے آیا ہوں. اگلی صفت نماز میں ایک صفت اور ہے خاشعون, جو نماز ہو جاتی ہے خشوع جس نماز میں آ جاتا ہے اس میں دوسری صفت آ جاتی ہے, وہ کیا صفت ہے, یا جب وہ چلتا ہے نا نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اللہ اکبر کہتا ہے نا, تو جس کے دل میں خوشی آ جاتا ہے نا بس پھر اللہ ہو کہنے کے بعد سب دنیا غائب ہو جاتی ہے, ہوں میرا کعبہ شریف تو اللہ ہو اکبر, بس کعبہ ہوگا کعبے والا ہوگا, اسی سے کہتے ہیں کعبہ,
काबा होगा काबे वाला होगा, दूसरा उसके पास बीच में सब रोशते जाना पीना दुकान बीवी बच्चे कारोबार गम बीमारी हाथ काट कुछ नहीं पता। सहाबा हमारे सामने जिंदगी में टांग काटने जी काट देना जिसमें नमाज में खड़ा हूं, वो टांग कहाँ जाती कहते तो मुझे होता ही नहीं है, मैं तो उसके सामने खड़ा होता हूँ सब जिसम ही नहीं मेरा होता, जो कर चाय काट दो इंजेक्शन लग जाता है अल्लाह हुक्म कहने के बाद। ऐसा खुशू खुशू की दूसरी निशानी है, जब खुशू आ जाता है ना खत्म, कोई ख्याल नमाज में नहीं आएगा और ये नमाज कैसी बन जाती है इस खुशू के साथ। अल्लाह अल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी नमाज बन जाती है कि नफिल भी तुमने दो रकात पढ़ दी ना इस तरीके से, नफिल भी पढ़ दिया तुमने तो सारी रात की इबादत से तेरी अफजल हो जाएगी, सारी रात की इबादत जो आप कर रहे हैं ये दो रकात नफिल तेरे जो है टप गए ऊपर निकल गए तेरे उससे नमाज। बल्कि एक हदीस तो आता है कि जिसने दो रकात नमाज ऐसी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे उसके गुनाह ही खत्म हो जाते हैं पिछले माफ। कितनी बड़ी चीज है यार नमाज, खाशियन उसमें दो चीजें आ गई, दिल के अंदर ख्याल ही नहीं आता जिसके दिल में खशियत होती है। तीसरी चीज कहते भाई नमाज की निशानी तो ये है जो कुरान बताता है कि नमाज की हमने एक दी है, नमाज जो किससे रुकती है फैश काम से बुराई से रुकती है, सबको पता नहीं है बात रुकते हम, मैं तो नहीं रुकता आप तो मशा नहीं कहा रुक जाते हैं नमाज के बाद तो सारे काम शुरू होते हैं क्रिकेट मैच जितने भी होते हैं सब खराफात नमाज के बाद होती है। यार नमाज पढ़ ली आराम दे इशा दे बाज तकांगे ड्रामे यार बह के आराम उस वक्त तो चलती है नमाज से फारिग नमाज अटके है ना मैम हम बीच में आई हुई रास्ते का वो आदत पड़ गई है जाने की, यार जल्दी से करो यार नमाज तो फारिग हो जाओ बस जल्दी करो जल्दी जल्दी बस घर पहुँच जाए हम किस तरीके से। हालांकि नमाजों के टाइम वो होने चाहिए जो कि शरीयत ने बताए हैं, फजर का टाइम बताया कि बेस्ट टाइम वो है, मगरिब बताया बेस्ट टाइम कौन सा है और ईशा का बताया बेस्ट टाइम कौन सा है, लेकिन हम वो करते हैं जो बेस्ट टाइम हमारा है। अल्लाह अकबर नमाजों के साथ ये हाल हो गया, अपनी सहूलत देखते हैं ये है या नहीं है ऊँचा बोलो पाए तो क्या करें मेरी पत्नी बोले जाऊँ गलत बोलूँ सच बोलूँ सही राह दिया करें जबान नहीं निकलती सही है बात। हमने भी कौन से टाइम रखे यार मेरे खाने का टाइम है यार 5:30 ही रख दो टाइम तो हो जाता है यार 5 तो लोगों की दुकान ही बंद होती वो आ जाएगा कर लेंगे अपना हम तो फारिग होना है यार बड़े काम करने हैं ईशा के बाद उधर क्या करना अल्लाह के नबी बेहतरीन ईशा की नमाज हुआ है जो देर से पढ़ी जाए है यार सुभान अल्लाह क्या खजाना होगा जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर इस नमाज को इस टाइम मेरी पसंद ये है हाँ ठीक है टाइम शुरू हो गया अल्लाह के नबी कह रहे हैं पढ़ लो लेकिन मेरी पसंद ये है इसको जरा लेट पढ़ो हाय तो कौन आशिक होगा जो जल्दी जाके 4 बजे ईशा पढ़ के आ जाए उसका सुकून होगा रात को नींद आएगी उसको गलत करूँ सही करूँ नहीं क्या करें हमारा टाइम अल्लाह ने चांस दे दिया यार बाकी टाइम तो गुजारा नहीं किसी चीज में किस में गुजारना पड़ेगा कम से कम देखें मगरिब और ईशा के दरमियान जो फासला बढ़ जाएगा सुभान अल्लाह नमाज पढ़ने वाला नमाज का इंतजार करेगा अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करता है उसका सवाब नमाज का ही होता है। कितना ज़ाय कर दिया हमने एक सवाब जिंदगी की नमाज के सवाब ज़ाय कर दिया ब्रत नहीं मानने मेरी बात का मजा ऐसे में आते हैं 4 बजे ईशा की नमाज पढ़ क्या लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं मेरा दिल तो ये करता है सहाबा इंतजार कर रहे थे कोई शौक से क्यों इबादत मिल रही है कि बगैर नमाज पढ़े नमाज का सवाब मिल रहा है उसका दिल अटका हुआ है कोई तो हिकमत होती है हर चीज में उम्मत की हिकमत रखी है मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनको ये सवाब भी मिल रहा है क्या फर्क पड़ता है खाएंगे पियेंगे बैठेंगे और जनाब ख्याल किधर जाएगा नमाज का टाइम हो रहा है खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं बैठ रहे हैं यानी वो उस वक्त बिल्कुल हालत में दुनिया में रहते हुए नमाज के साथ है। ऊंचा बोलो सवाल कैसी कैसी बातें बता रहा हूँ आपको देख कल भी थे मजलिस में आप सब आप नहीं इतने उठ जाए हमारे मजलिस में ये भी बात सुस्ती करना बाकी सब थे आप थे इतना मैंने कहा था जहाँ मेरी गाड़ी चलेगी पीछे से चलानी पड़ेगी गाड़ी ये नहीं अभी लंदन के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह अब घूम पड़ेगी भी नारे हर खूब सैर करते रहेंगे जाएंगे अल्लाह को जो याद करना और पीछे लगा देंगे गाड़ी, इंशाल्लाह गाड़ी रुकेगी कहाँ जाके, जन्नत फिरदौस में। तो मेरे भाई हो, ये देखो कितनी बड़ी बात है नमाज, ऐसी नमाज जिसके अंदर दूसरी सिफत बताई, जो नमाज क्या करे तो भाई सुत रोके कम से कम नमाज पढ़ने के बाद, इतनी तो है आज। इसमें तीन सिफतें बाकी तो और हैं, लेकिन मैं एक जल्दी बात कर रहा हूँ, कवर हो जाएगी बात इससे, कि जिसमें ख्याल ना आए नमाज में तो वो खुशी वाली नमाज है, तो खुशी आ गया। और जिस नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये है कि जाने के बाद कोई ख्याल ना है, जाने के बाद कोई बुराई ना करे, और जिसम बिल्कुल हल्का हो जाए नमाज के बाद, ये सारी किस चीज़ की निशानी है आपके दिल में क्या आ गया, और जब खुशू आ गया तो अल्लाह क्या कह रहा है, कद अफलहल मोमिनीन, तुझे किस चीज़ का गम है, हर नमाज तेरी जन्नत है, हर नमाज तेरी बुलंदी पर है, हर सीधा तेरे ऊंचा लेके जा रहा है, कोई अमल नमाज के बराबर है ही नहीं अल्लाह को पसंद। भाई मस्त हो जाएगा नमाजी जिस वक्त देखेगा अपने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अरूज और ऊंचा दिखेगा, जिस तरह मैंने इंतजार की बात की है, वो इंतजार करने वाले दिखेगा, मैंने मगर से इशारे का इंतजार किया था, मुझे सवाब क्या मिला इसका, मैं तो रोटी खा रहा था, मैं तो बीवी से बात कर रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, बस घड़ी को देख रहा था, अभी शाम होने वाली, अभी शाम होने वाली है। इस इंतजार में जब दिखेगा कि ये दर्जे, ये मुकामात, इतने मुकाम मिलते 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 कहां पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, कहां पहुंचेगा, किस कुर्ब में पहुंचेगा, हबीब सदीक का मकान नजर आ रहा होगा, हजरत उमर का मकान नजर आ रहा होगा, हजरत अली का मकान नजर आ रहा होगा, क्यों कहां गया, बिल्कुल करीब आ गया, और ऊंचो के देखेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार महल नजर आ रहा है। कौन पहुंचाएगी सब आपको नमाज, कौन सी नमाज, ये छोटी आयत ही पढ़ी है कि मैंने आपको सामने, वो कोई लंबा थोड़ा नहीं किया, सारी जिंदगी बन गई ना एक आयत में, आ गई नहीं, आ गया पूरा दिन आ गया ना। हम मेरे भाई हो, मैं कहते हैं ये कारपेट है, इस कारपेट पे भाई जान नमाज जब होगी ये पाक होगा, एक बच्चा पेशाब कर गया है, सुनना मेरी बात, बच्चा क्या कर गया, बड़ा तो नहीं कर सकता ना, बच्चे करेगी ना, बच्चा क्या कर गया। अब मसला बताते हैं मौलाना साहब सारे कि भाई ये जो बच्चे का पेशाब इसको साफ करो, ना तो नापाक है, यही ना मौलाना, तो पता नहीं यही होगा मसला। तो अब क्या करेंगे जी, कोई वहाँ खड़ा हो गया, वो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं क्यों, यहाँ बच्चा पेशाब कर गया है, गीला पड़ेगा, सब बोले नहीं बोलेंगे, सबसे पहले इमाम साहब भाई इसमें कुछ चीज़ डालो या नमाज नहीं हो जाएगा, हम कारपेट को ऐसे छोड़ देंगे, बस यही करते रहेंगे, नहीं क्या होगा, पानी लाएंगे साफ करेंगे उसको, जगह बनाएंगे ताकि हर आदमी नमाज पढ़ लें। उस पेशाब से पाक हो गया तो कारपेट किसके काबिल हो गया, पेशाब से पाक नहीं हुआ तो पूरे कारपेट से कट गया ये हिस्सा, सब जगह सिजदे हो रहे हैं, कोई बेचारी जगह नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसको कैसे हमने पाक किया, पानी डाल के, अगर पानी ना डालते तो क्या होता, समझ गए बात, करने से हुआ ना, तो खुशबू कहां से आएगा, किस दुकान से आएगा, हमारी नमाजें ही नहीं हो रही, हमारी कबूली नहीं हो रही, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, नमाज के अंदर क्या पता करना चाहिए, खुशबू, तो खुशबू कहां से आए, ख्याल कहां आता है, कहां आता है ख्याल, मुझे बोलो, नमाज खराब, गुना कहां से, कौन कराता है गुना, मुझे बोलो, दिल, वहीं जमा दबा वहीं पड़ता है ना, ठीक, बुराई कौन कहां से शुरू होती है, बुराई किस थॉट से शुरू होती है, दिल, तो पता चले शाम सब काम तो ये क्या, दिल, ठीक है ना, और दिल हमें खुशियों नहीं दे रहा, जिससे कारपेट नमाज नहीं पढ़ने दे रही थी, तो हमें क्या करना चाहिए कि दिल को क्या करें, ऊंचा बोलो, अल्लाह ताला कहता है दिल को क्या करो, साफ हो गया तो क्या हो गया, खुशबू आ गया, खुशबू आ गई तो नमाज हमारी कबूल, कारपेट साफ हो गया तो सजदा हो गया, दिल साफ हो गया तो क्या आ गया, खुशबू आ गया, दिल को साफ करना, कुल शैन सकारतन सकारतन कल मुनोचा जिक्र अल्लाह, अल्लाह के निफान, ठीक है कारपेट को साफ किया, किससे किया, पानी से किया, शैंपू से किया, अब तुम्हें दिल साफ करना है खुशबू लाने के लिए, ताकि नमाज तुम्हारी खाशीन में हो जाए, तो तुम दिल को साफ करो, और दिल का मसाला क्या बताता हूं, जिक्र अल्लाह। अब मसला समझ आ गया सर, जिक्र क्यों करते हैं, हाय हाय, अब समझे, दिल साफ होगा तो नमाज अच्छी हो जाएगी, फलाह पा जाएंगे, और जो जिक्र नहीं करता
उसको फिक्र ही कोई नहीं, जैसी नमाज पढ़ लेती जिंदगी भर नहीं होगी। जिंदगी भर कारपेट को आप ऐसे रख दें और पानी से साफ ना करें कारपेट को, कारपेट कभी साफ नहीं होगा, कभी साफ नहीं, और कभी नमाज यहां हो नहीं सकेगी। मसला यही ना, आप दिल को ना साफ करें वरना अल्लाह ताला कभी भी, अगर कारपेट को साफ ना करो तो पानी ना बनाता, पाकी के लिए इसने पानी को बनाया, अल्लाह ताला कभी जिक्र को ना बनाता अगर उस इंसान के वजूद को पाक ना करता। जिक्र करने वाले बहुत हैं उसके, कोई कमी नहीं है जिक्र करने के लिए उसकी, सिजदों में गिरने वाले बहुत हैं, ऐसे नूरानी नूरानी फरिश्ते हैं जो आज तक जिन्होंने देखा ही नहीं फरिश्तों के, फरिश्ते कहां है अल्लाह के कुर्ब के अंदर, ऐसे लोग क्या पढ़ते हैं अल्लाह की तस्बीह करने वाले फरिश्ते हैं। हमारा आप तुम्हारा क्या जिक्र, हमें वो जिक्र के लिए उसने कहा तुम सुभान अल्लाह को बड़ा खुश होता, उसके तो जिक्र करने वाली पूरी मखलूक है, सुभानल्लाह मा फिस समावाती वल अर्ज, कौन सी चीज अल्लाह कहता मुझे दिखाओ ना, एक एक मच्छर को ले आओ, एक कीड़े को निकाल लो जमीन से, जमीन से एक चींटी को निकाल लो, पूछो उससे कि तू क्या करती है, वो कहेगी आज मैं मुझे जो हुक्म दे गया जिक्र के लिए दुरूद पढ़, मैं इतने 1000 दुरूद पढ़ती हूं, वो कहेगा मुझे 1000 दफा दिन में कहा गया सुभान अल्लाह पढ़, हर खालिक का जो वजूद जिस खालिक ने वजूद जिस चीज को दिया है कोई भी हो वो अपनी खालिक की तरफ जहां करती है जिक्र के साथ। मेरा तेरा क्या है, खाते हैं 10-10 रोटियां खाने के बाद भी डकार मार कर सो जाते हैं, इतने नखरे से फिरते हैं दुनिया के ऊपर कि हमें जरूरत क्या है जिक्र की, हम क्यों करें। तो मेरे भाई जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया इस पैदा किया है उसके लिए नहीं कि अल्लाह हमारा जिक्र, इसलिए खुद हमारे लिए कहा है कि तुम जिक्र करो तुम्हारा अंदर ये पाक कर देगा, जब ये पाक कर देगा फिर मेरी इबादत तुम्हारे इतनी बुलंद हो जाएगी कि मैं तुम्हें दर्जे बुलंद करूंगा, तुम्हें कबूल करूंगा, कद अफलाह मैं तुम बख्श भी तुम। तो पता ये चला बेसिक चीज मेरे भाई, नखरा मत करो अल्लाह का जिक्र करते हुए, करेंगे सब जिक्र पक्की बात, इसमें नखरा करोगे तो अपने नुकसान है, अपने रब से नखला कर रहे हो, हम नहीं करते तेरा जिक्र, नहीं हमें क्या जरूरत जिक्र करने, निकालो जिक्र वालों को बात, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, ये देखो ये काम कर रहे हैं, हम देखो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ ले कुरान मैं देखता हूँ बगैर जिक्र के कैसे कबूल होगा, अंदर तो देख क्या गंद घुसा हुए थे, और कुरान क्या अल्लाह ने तो क्या बिल्कुल मत छेड़ो मिलना होता है, जब तक तू पाक ना हो इसको हाथ ना लगा। हम समझते हैं पाक किससे होता है आदमी, पाक तो इससे होता है दिल से, यही तो बात है, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो इससे फजू से पढ़ लेते हैं, ठीक है शरीर मसला है तो फिर बस वही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और जब दिल पाक हो जाता है तो अलिफ लाम मीम से आगे हिलते ही अलिफ लाम मीम के इतने माने उसके जहन में आ जाते हैं वही खड़ा रह जाता है, अंदर ही पाक हो गया। वो तमाशे नजर आते हैं, वो तमाशे जिस जबान में हजरत अली बोल रहे थे कि सारा कुरान मैंने देखा है पूरा कुरान, मैं आगे चल ही नहीं सकता, बिस्मिल्लाह की बेके नुक्ते के अंदर है, जिसको नुक्ते में सारे जलाल नजर आ रहे हैं तो उसको पूरे कुरान में क्या नजर आता हो, क्यों सफाई कल्ब थी, कोई चीज अल्लाह के साथ जिसका ताल्लुक है मेरे भाइयों, जिस इबादत का अल्लाह से अल्लाह जो नजदीक करने वाली इबादत है वो सिवाय पाकी के कभी नहीं मिल सकती, और जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करेगी ये मखलूक ज़लील ख़ार होगी, दुनिया में भी आखिरत में कोई अमल उसका कबूल नहीं होगा, कोई दर्जा उसको नहीं मिलेगा, अल्लाह उससे राजी नहीं होगा, नापाक इंसान की क्या चीज़ कबूल होगी। बातें मेरी बड़ी अजीब है, लेकिन गौर क्या करें मेरी बातों पर, मैं पूते नहीं मारता, इतने सिद्धे कर लो, मैं तो तह तक जाता हूं कि ए दो रकात पढ़ लो ऐसी, इब्ने अब्बास रज़ी दो रकात ऐसी पढ़ ले जो खुशी के साथ हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात सो, सारी रात की इबादत से अफजल तेरी इबादत हो, कितना हल्का है हमारे लिए काम, बाकी रात क्या करें कि उस इबादत उस दो रकात को उस मुकाम पर ले जाने के लिए अल्लाह का जिक्र कर सारी रात, कि मेरी नमाज ऐसी हो जाए, इतना जिक्र करो नमाज से पहले, इतना जिक्र करो इस नियत से अल्लाह ताला मेरी नमाज ऐसी बना दे जैसे तू चाहता है। जिक्र करने वाले तेरे बहुत हैं, मैं क्या जिक्र कर तेरा करूंगा, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, मैं तेरे फरिश्तों से मुकाबला कर रहा हूं, तेरी मखलूक से मुकाबला करूंगा, मैं जिक्र करूं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि पाक हो जाऊं मैं किस तरीके से और तुझे एक सिजदा दे सकूं, मेरी माथा तेरे अगर टिक जाए और कैसे सुभान अल्लाह, और तू खुश होगा कि जा मैंने कबूल किया, मैं कहूं अल्हम्दुलिल्लाह तो तू ऊपर से जवाब दे हाँ मैंने तेरी तारीफ सुन ली मुझे पसंद आ गई, रब्बुल आलमीन कहता बिल्कुल तूने सच कहा मैं तेरा रब हूं देने वाला हूं तुझे, और जैसे जैसी तारीफ करते जाए अल्लाह ताला वही बरकत हमारी जिंदगी में उतारते चले जाए। तो ये जिक्र जो भैया आज ये लोगों ने अख्तियार किया है वो पागल नहीं थे, जो इसकी दावतें देते चले गए और ये सब चलते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। हर इबादत बुलंद है लेकिन हर इबादत की रूह जिसमें है वो जिक्र के अंदर है। वक्त लगाएं अल्लाह के जिक्र पर, जितने दर्जे पे आप इबादत करना चाहते हैं उसी अपने रब के पास देखें। आप किसी को कार्ड भेज रहे हैं, आप लिफाफों में डालकर शादी की समझो तो किसी के लिए जल्दी भी कार्ड होगा अरे अच्छा किसको भेज रहे हो, नहीं नहीं इसको ऐसे ना भेजना, इसको अच्छा रैप करो। वक्त लगता है ना रैप करने में, धागा बांधने में, खुशबू लगाने में, बड़े आदमी को दे रहे हो। इसी तरह कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, क्यों कि अल्लाह को नमाज दे रहे हैं। जब नमाज पढ़ें तो हम समझ जाएं कहाँ जा रही है नमाज हमारी। शर्म करें यार, ऐसी नमाज अल्लाह को देंगे हम, शर्म की बात है। मैं इससे पहले ज़रा खड़काऊँ तस्वीर ताकि अल्लाह को पता चल जाए, सफाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लाए 10,000 तस्वीर लगा के ना फिर खड़ा हो लगा, चल ठीक है अलहमद अब कबूल है तेरी नमाज, कुछ तो तुम्हें जोर लगाया ना सफाई करने के लिए, अब मैं कबूल करता हूँ। नहीं समझे, हर नमाज के बाद अलहमदिल्ला तस्वीर खींच है। किस चीज़ की सिखा दूँ आपको जिक्र, जिसने सीखी ना उसके बाद आ जाए इंशाल्लाह। कल भी काफ़ी लोगों ने सीखा है, 100-150 आदमी सीख गया था कल, और 100 आदमी इंतज़ार में था। किस तरह अल्लाह की रहमत होती है बताएं। वो सीखने वाले चले गए, मुझे क्या पता कौन थे क्या नहीं थे, मेरा नाम से रिश्ता ना कभी मिलेंगे ज़िंदगी में, लेकिन काम बन गया। अब उनके दिल चल रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे। इतना आसान तरीका, याद रखो एक बात, हम सब ने जिक्र सीखा है तो इसको आप कभी भी खामोश ना होने दें। बड़ा आसान तरीका है, बस क्या आप ये बस हर वक्त ये नियत कर लें कि मेरा दिल जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बस सोच रहे मेरा दिल अल्लाह अल्लाह, बस ये सोच आपके जहन में होगी दिल की तरफ, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो दिल आपका अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। इसका ये तरीका है, जब सीख लें मुझसे जिक्र, उंगली लगवा लें फकीर से, फिर चल पड़ेगा दिल आपका, तो फिर आपने बस यही सोचना है कि मेरा दिल जो है खुद आपका दिल अल्हम्दुलिल्लाह, बस दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है मेरा। तो हर वक्त आप अल्लाह अल्लाह करेंगे, जिक्र आपको जारी रहेगा, पाक होते रहेंगे इंशाल्लाह। आंख से गुनाह हो रहा है पाक हो रहे हैं, कान से गुनाह हो रहा है पाक हो रहे हैं, क्योंकि गुनाह तो हमारे सिफत में घुसा हुआ है ना, इधर से हम पाक हो रहे हैं, इधर से पाक हो रहे हैं, तो हम दिल में कुछ कह रहे हैं ना, हम को अल्लाह को याद कर रहे हैं, जबान हिल नहीं, अल्लाह हर वक्त इसको इतना पक्का कर रहे हैं। देखें हर चीज पक्की हो सकती है, इसमें क्या बात है। ड्राइविंग कितनी मुश्किल चीज़ है, किसी पूछे उसको ड्राइव नहीं आता, नहीं जी बड़ा मुश्किल है जी, कभी गियर कहेगा जी ये इस तरह होता है जी, कभी उसको गियर को बताया, कभी क्लच को कहेगा जी ये ब्रेक ऐसे मारते हैं, तो कुछ जाहिलों वाली आता जी उन्हें ड्राइविंग, लेकिन जब करते करते एक्सपर्ट हो जाता है, और फिर एक उंगली से वो घुमा रहा होता है किसको, स्टेयरिंग को, पूरा हाथ भी नहीं लगा रहा ऐसे कर रहा है। ऐसी है, जब आपने मेहनत की कोशिश की तो आपको ये हल दिल को याद करने के अल्लाह अल्लाह करें, पता ही चल रहा अल्लाह हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल लगता है, तो ये कैसे कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ने कहा है तो आसान, बिल्कुल आसान। अल्लाह के जिक्र को मजबूती से पकड़ने लाता मुझे आपको तौफीक नसीब।